वो तुम खा लो, तो मैं गई बुखरे, मैं अंदर जा करके नवनीत भंडार में से और दही और नवनीत की मक्खी निकाल कर बाहर रखने लगी और ला करके वो सोचा अपना सर्वस्व उनके चरणों पर निछावर कर। माई हूँ सची लाज, हूँ सची लाज रही, जब घर को माखन ले निकसो तब मैं बांध गई, सब हंसको मोरो मुख चितयो मीठी बात कही, रही थगी चेतक सो लाजो परी गई प्रीत सही, बरसो कान जाऊ बलिहारी लाऊ और बहू तीर शाम श्याम को ज्वाल सयानी सर्वस दे रही। चौथी बोली मेरी बात सुन, यही चर्चा बोली सखी, अपराह्न का समय था और मैं उस समय ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो सड़क की ओर में कुआ अशोक वृक्ष की छाया में बैठी, इतने में देखती हूँ तो श्याम सुंदर दरवाजे पर आकर खड़े हुए, बड़े शांत खुश चंचलता का नाम है। इतने में देखा तो कुछ गोप शिशु का एक दल और आया, वो विशाल वृषभ ओजस्वी जो प्रदीप त्याग ये सब आए, ये भी सब शाम योजना बनी थी ना तो पहले से भी शांति से रहना। उसके बाद दाम सुदाम किंकिनी इनकिनी ये सब कोप कृष्ण ये सब आए, ये भी सब कोला है भाई। इसके बाद फिर बड़े रसीले सुबल सुदाम कोप के लिए सब आए, फिर ये भी आज चंचल नहीं, फिर मधुमंगल आया, पुस्तक आया, हंसक आया, इनमें भी सफलता का देश नहीं, सब के सब बाहर आकर, बाहर आम का पेड़ था उसकी छाया में सब के सब आकर इकट्ठे हो गए, मानो कोई लूटने की तैयारी में दल बल बटोर के अपना सब देखते हों घर मुख मुद्रा में ऐसे थे कि मानो कहीं खेलने जा रहे हैं और थकावट मिटाने के लिए पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं। कुछ बोला नहीं तो इतने में क्या जैसे जैसे शाम सुन बसा फिर उठे, उठ करके मंद मंद चलते हुए और मेरे भवन के अंतर भाग में पहुंच गए, वृक्ष क्यों ही बैठे बाहर, और तब मैंने देखा कि अब जरा अपने भी देखें तो मैं शीघ्रता पूर्वक उठ करके चिपके चिपके हो और भवन से कुछ आगे चले गए और फिर राज सड़क को पार करके मैं पहुंच गई बगीचे में, और बगीचे में जो रास्ता था अंदर जाने का उस रास्ते से मैं जाकर घर के आंगन में पहुंच गई, भवन था सूना, घर को सब लोग आज उत्सव देख लेंगे, हिंडोला था हिंडोला, घर में केवल अकेली मैं थी, तो भी इनकी जान में तो मैं थी नहीं, जिन्हें देखा घर सूना है तो निसंकोच ये घर में अपना अधिकार कर चुके, मैं गधि मंथन कर रही थी और नवनीत से भरा भान रखकर अभी वही वो छाया में हवा लेने आ गई, तो मैंने देखा आकर कि नीलमणि मटके से मक्खन निकाल निकाल कर आरोप रहे, खा लिया आप देखा तो नहीं तो सखाओं को संकेत किया यही बुलाया, एक एक करके सब को भीतर बुला लिया, अब तो बस भर भर के हाथ सब के सब दही और नवनीत सब खाने लगे, अब वो खाने में जल्दी जल्दी कहीं भागने की मन में थी ना तो कहीं गिर जाए हाथ, छोटे छोटे हाथ कहीं हाथ से गिर जाए, बच्चे तल पर गिर जाए, तो बीच बीच में किसी गोप शिशु की ये गुप्त हमने पकड़ लिया, तो बिल्कुल गोपी आ रही क्या कहवा गया जा, किसी किसी के पीछे छिप जाते जाते, जब देखते कोई नहीं आया तो आंखें नचा नचा कर फिर खाने लगते, तो इसने कहा कि सखी क्या बताऊं, मैं तो ललित भंगिमा पर मानो दिख छिपी हुई देख रही थी, मुझे जान न ले और कहीं बिल्कुल सामने होती तब तो मूर्छित होकर गिर ही पड़ती, तो वात्सल्य भाव हृदय मेरे आनंद की बाढ़ आ गई, वो नीलमणि के मुख की मुख चंद्र की शोभा अब बोले कैसी शोभा की बहन? अरे बोले कैसी शोभा क्या बताऊं, देखा तो आंख ने ना, इस निगोरी वाणी में तो शक्ति नहीं जो देखा सो बता दे। तो कहीं बोलने की इंद्रियों में शक्ति होती, देखने की सब बताती कि वो कैसी चीज थी, ये तो असंभव है। मैं तो बस चित्तदशी खड़ी रह गई, आप गए हरी हैं सुने घर, तथा सदे बाहे रही छाड़े, देखो गज माखन हरे भीतर, तुरत नचो गज माखन पाए। लैले खात धड़क अधरम पर, सैन दे सब सखा बुलाए, कि नहीं देख भर भय अपने कर, चिकित रही गज बूंद हृदय पर। चितवत चितवत करी मन में डर, उठत ओठ ले लखत सदन को, सुन ले खात ग्वालनी उमर अंतर भई ग्वाल जिये देखती। मगन भई अति उड़ आनंद भरी, सूर श्याम मुख निरख सकत भई, कहत न बने रही मन दे हरी। इतने में एक और बोल दिया, अरे हमें सुनाऊ अपना अनुभव। अब इनके एक ही बात बोली कि ऐसी झांकी हमारे यहां होती, ये क्या बताऊं, ये तो नवनीत भोजन नहीं है, ये तो मानो कमल का और चंद्रमा का सम्मेलन है, पद्म और चंद्र का सम्मेलन है। ये श्री कृष्ण के जो कर नहीं है ये तो पद्म है, और मुख नहीं है ये पूर्ण चंद्र है। तो पद्म को अब पद्म से चंद्र का विरोध है, तो कहते हैं कि पद्म को अपना जो चंद्र विरोध है ये भूल गया, और वो मानो नवनीत का उपहार लेकर के चंद्र से मिलने आया। कर जो है ना, ये कर पद्म है, ये कर पद्म नवनीत का उपहार लेकर के मानो मुख चंद्र से, मुख में लेते हैं ना कर से, तो मुख चंद्र से मिलने आया है। और ये यशोदा नंदन के जो मरकत श्याम अंगों पर मुख्यत बकते हुए नवनीत बिंदु हैं, ये मानो प्रिय समागम से प्रफुल्लित चंद्र ये नीले आकाश में सुंदर मानो अमृत कणों की वर्षा कर रहा है। तो सुंदर कर आनन समीप अच राजत ही आकार, जड़रू मनो बैर विदुषो तभी मिलत लय उपहार, गिर गिर परत बदन ते उर पर हैं दधिसुत के बूंद, मानव सुबग सुधा कर बरखत प्रिय जन आगम इंद। इस प्रकार से ये गोप वधुएं तमाम आपस में चर्चा किया करती, और ये इनके बाद दूसरी कोई बात नहीं। तो ये बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किसको इस लीला को जो लोग चोरी समझते हैं वे स्वयं अपने ज्ञान की चोरी करके बैठे। चोरी दूसरे की वस्तु होती है, चोरी बिना इच्छा ली हुई होती है, चोरी अनजान में होती है। ये तो गोपियों के घर गोपियों की दी हुई चीज उनकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए, और ये भगवान की लीला रही, इसको चोरी मानना ये एक प्रकार से अज्ञान का प्रदर्शन करना। तो ये भगवान इस प्रकार नित्य नई लीला अवरोध होने लगी। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि भाई एक काम करें, जरा मैया को इस बात बता दूंगे तो सुनकर राजी हो। दुलाना देने का ये मतलब नहीं कि ये मन में नाराज हुई हूं, हमारे घर चोरी हो गई और तुम्हारा लड़का चुरा के लिए गया, बड़ा बदमाश है, इसको दंड दो, इसलिए नहीं, वो चाहती दंड वंड तो कहीं मैया दे नहीं, और जा करके वहां पर हम दुलाना देखें और सब बात सुनावे मैया को, और मैया भी आनंद में झूम उठे और जरा से ये डरे, और फिर हम इनको इस चोट देख हंस दें तो ये हंसने लगे तो हमको बड़ा आनंद आवे। इस प्रकार मनोरथ करके वे सब उलाहने का मिस लेकर और वे पहुंची नंद बाबा के यहां।
तो ये भागवत में शुरू होता है कि ये पहुंची और जा करके क्या क्या कहा, वत्तान मुंचन क्वचित समये दोष संजात हास हेयम स्वादत्यत दधिपकल्पित योगैः मर्कान भोक्षन विभजत सत्येनाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्यालाभ सग्रे कुपितो या चुक्रोशतो काम हस्ताग्राह्य रचयति विधि पीठ को लूखलाद्य छिद्रम यंतर्नीत वयुनक्षित्य भाण्डेषु तद्वत् ध्वांसागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो नृगृषु शुभ्यग्रचित्ता एवं धार्ष्यान्शतिकृते मेघनादी निवास तेयोपायृति सुप्रतीको तथा इत्थम स्त्रीभिः सबनन श्रीमुखा लोकनिभिर्व्याख्यात्यर्थ प्रसदमुखी नुपाल भवैच्छत। तो गोपियां जाकर के उलाहना देने लगी। इन श्लोकों का संक्षिप्त अर्थ कल बताया ही था। तो ये गोपियां उलाहने का मिस लेकर के गई। उस समय वहां क्या हो रहा था, नंद भवन में क्या हो रहा था। अब मैया को आनंद देने के बाद उनके मन में भी आई, जरा एक आधी चोरी तो यहीं भी कर ले, मैया हमारी कला तो देख लेंगे, और तो कुछ बात नहीं, हमारी कला मैया देख ले और वहां चोरी वोरी से मतलब नहीं, मतलब तो मैया को प्रसन्न करने से। तो मैया को जरा दूसरे काम में भेज दिया, प्रेरणा कर दी। तो मैया उधर गई और इधर ये मटकी में हाथ डाल करके और मक्खन निकालने लगी। तो मैया इतने में आई गई तो देखा मक्खन कि उसने हाथ दिए हुए, तो बोले क्या कर रहा है, कृष्ण क्वास करोषि किम पितरती सुत्वय मातुर्वच साशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रभ्य काम ब्रवीत मात कंकन पद्मराग महसा पानिर्ममा तप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस निर्वापित। बड़ी बाल सुलभ बात, ऐसी बढ़िया बात। अरे बोले कन्हैया, अरे बाप तू कर क्या रहा था। अब ऊपर तो अरे माँ खड़ी है तो डर गए, माँ की चोरी तो छोड़। अब जैसे छोटा निर्बोध बच्चा बोलता है अपने में बड़ी समझदारी लाकर, तो थोड़ी देर तो सोचा क्या कहें माँ से, फिर बोले अरे मैया, अरे मैया देख तो तुझको तो ठीक पता नहीं, ये तैने मेरे ये कंकर में पद्मराग लगा दिए, पद्मराग मणि लगा दिए ना, तो इसकी लपड़ से मेरा हाथ जलने लगा। ये पद्मराग मणि जलती हुई सही, तो इसकी लपड़ से जलने लगा मेरा हाथ, तो मैं क्या करता, ठंडा चाहिए मुझको, तो मैंने माखन के मटके में हाथ डाल दिया। तो मैया प्रसन्न हो गई। तो मैया को जरा सा ये दिखाया। इसके बाद जिस दिन ये पहुंची, उस दिन क्या था, बड़ा सुंदर भाग, ये मैया दधि मंथन कर रही और दधि मंथन की ध्वनि में वो श्याम सुंदर के कमर की करधनी के वो घूंघर और ये पैरों के नूप, ये मिलकर स्वर बजने लगा और ये लगे नाचने। तो अब वो गोश से दूध लेकर के आने वाले गोप वे सब देख देख करके श्याम सुंदर का नृत्य सबके सब मतवाले हो गए, कल से रखना भूल गए, कौन कहां रखे, अंग उनके कांप रहे, कितनी तो कल से धड़क गए और दूध की धारा बहने लगी, भार नहीं इनको लसत की आंखें लगी नंदन को देखने में, और बजरानी का तो आनंद बस अब वो लगे नाचने। ये जो जो बिलोवे चोंचो वो शब्द सुन सुन के उनके साथ ताल दे दे करके नाचे, तो चोंचो मोहन नाचे, जो जो रई घमर को होए रही तैसी किंकन धुन पगन ऊपर, सहज मिले सुर दोई, दोनों सुर मिल गए, कंचन को कठोरा मन मोचन, बिच बघन बघ न रहो पोयरी, देखत बने कहत नहीं आवे, उपमा को नहीं कोयरी, निरख निरख मुख नंद सुवन को सुरवर आनंद होयरी, सूर भवन को तीर नसायो, बल गई जन निर्ज सोयरी। ये बड़ा आनंद, नाचते नाचते ही ब्रजनंदन बस आनंद मत हो उठे, बजरानी ने हाथ में लिया वो एक बड़ा सुंदर लौंदा माखन का, बोली ले ले। अब ये बार बार इनको अब मणि खंभे में एक बार गोपी के यहाँ गोपी को वहम हुआ, एक बार स्वयं ये श्याम सुंदर को वहम हुआ, और आज मैया को वहम हो गया। ये मणि खंभे के पास ही थी, श्याम सुंदर वहीं थे, तो देने लगी श्याम सुंदर को दीखा अंदर दूसरा मणि खंभे में, तो ये चकित हो गई, भूल गई मैया, बोली एक सा नाच रहे हैं, एक सा स्वरूप है, ये नीलमणि दो आ गए क्या, एक था दो हो गए क्या। अब ब्रजेश गहनी वो गहनी पड़ी इस विचार में, रसोत में बह गई, चित्त उसका और भी चंचल हो गया, बुद्धि थक गई। ब्रजानी ने सोचा कि नहीं दो ही हैं थे, तो अब दो भाग बने, बड़ा अच्छा दो हो गए लाला, दो हो गए, एक से दो हो गए, तो माखन के दो हिस्से कर दिए। कभी कर्णपुर ने इसको देखा, तो देख करके सवल किया, नृत्यंतम अत्यंत विलोकनीयम कृष्णम मनिस्तम भगतम मृगाक्षी वीक्ष साक्षाद एव कृष्ण बगरे दुधा वितेने नवनीतमेकम। मैया ने देखा दो हो गए, तो कहा दोनों को खिलाना है ना, दोनों बच्चे एक, अरे एक के दो हो गए, तो वो नवनीत के दो भाग करके खिलाने लगी। ये दृश्य यहां हो रहा था, इतने में उलाहने का मिस लेकर के और पहुंच गई वो सब, पहुंच करके अब वो इन्हीं श्लोकों का भावार्थ है। अब वो कहने लगी मैया देख, अरे बोली क्यों आ गई आज तुम सब के सब इस समय, देखने आई हल्के लाला को। अब मैया के मन में दो थी, एक तो ये चीज मैया के मन में कि देखने आई है तो जरूर देखे और सब आशीर्वाद दे जाए मेरे लाला को, खुश होके जाए, और दूसरी मैया के मन में ये कि कहीं नजर न लग जाए किसी की, कहीं किसी ने लाला को नजर लगा दी, माधुरी है ये वात्सल्य भाव है ना, तो मैया दिखाना भी चाहे और न दिखाना भी चाहे, पर बोले क्यों आई हो, बोले क्या करें, जरा गुस्से में बोली। तब मैया को ये हुआ कि नजर तो नहीं लगे, नजर तो मोहित होने पर लगती है ना, ये गुस्से में बोलती है तो आशीर्वाद नहीं देगी। तो मैया फिर मैया नम्र हो गई और वो जरा आंखें उनके लाल, तो बोली यशोदा रानी ने कहा कि क्यों आई, तब वो बोली क्यों आई बताऊं, बताऊं क्यों आई, ये तेरा जो लाला है ना, यह है तो छोटा सा अई ब्रजराज भाविनी भाविनी तांत तुरंत भावु अयम सब कुमार यदयम द्युपत्र एवाधुनाधुना इव भुवन मवलमान संपल लीलोपि पल्लीलोपि कृतमभ्यासति चित्वा वा किं विधास्यति। अन वृंदावन चल दूंगा, कहे कहा बजरानी क्या बताऊं, अभी ये जरा सा बच्चा, लेकिन देख ये बड़ा उच्छृंखल होता चला जा रहा है, अभी छोटा सा पौधा पर अभी अभी अंकुरित हुआ, केवल दो ही पत्ते लगे हैं, अभी कौन सा बड़ा हो गया, तो अभी भी इसकी दशा है कि सारे भुवनों को कपा रहा है, जब शक्ति विकसित नहीं है और कहीं ये बड़ा होकर के यही होता रहा तो ये तुम्हारे बजबज को नष्ट कर डालेगा। बड़ी इसकी चेष्टा आजकल ऐसी हो रही है, तो ये जब विशाल वृक्ष बनेगा शाखा पत्रों से और पुष्प से और फलों से समन्वित, तो तुम्हारा ये नीलमणि क्या क्या करेगा मैया, जरा सोच तो ले। इतना ही कह गई, अगली बात कह नहीं सकी। देखा श्याम सुंदर की ओर, देखते ही मोहित हो गई, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, चुप हो गई। यशोदा रानी के गोद में बैठे हैं आप, गोद में स्वर्ण सिंहासन यशोदा रानी बैठी, गोद में आप बैठे और मैया वो कुछ खिलाने का उपक्रम करने लगी। तो श्रीकृष्णचंद्र की ओर देखा और वो मुस्कुराए। मुस्कुराते ही ये जो है ये इसको प्रेमावेश हो गया और ऐसी भंगिमा से इतने उन्होंने देखा कि इसके मुख पर हंसी आ गई। पर देखा कहीं हंस दिया मैंने इधर तो ये उलाहने की मेरी मुद्रा ही नष्ट हो जाएगी। तो मुंह फेर लिया और अपने हंसने को कैसे रोका। यशोदा बोली, तू तो बड़ी कविता करने लगी सखी, ये नीलमणि तो तू तो बस रचना ही करने लगी। अरे बता तो सही क्या किया। अब उसको तो हंसी आ गई, उसको हंसी आ रही, बता रही क्या। तो वो तो बोली नहीं, दूसरे ही बोली कि मैया देख मैं बताती हूं, ये तो बेचारी बोलती नहीं तेरे डर से, ये बड़ा नटखट हो गया। ये क्या करता है, बत्सान मुंसन कुछ समय कुछ समझा कहा सह। जब घर में गायें नहीं दुई रहती, दो गोदोहन नहीं होता, उसके पहले ये जा पहुंचता है और अकेला ही नहीं जाता, ले जाता है सैकड़ों बालकों को अपने साथ, दल का दल बटोर कर बानरी सेना। और कब पहुंच गया पता नहीं लगता, ये कैसे जाता है और जा करके बछड़े में रस्सी खोल देता है। तो बछड़े सब का सब दूध पीने लगते हैं, अरे हम दौड़ती हैं पाकर, सब गोप दौड़ते हैं, तब तक तो बछड़े अपना अपना दूध पी चुकते हैं। और ये काम कब करता है तुमको मालूम है, ये देखता है कि कब ये खाली बैठी है, कब काम कर रही है। तो जब हम खाली होती तभी नहीं जाता ऐसे, हम जब घर के काम में फंसी हों और इसको डर न रहे कि ये कोई पकड़ लेगा, तब जाता है। तो जा करके असमय कुछ असमय तब जाता है और तुरंत ऐसी चेष्टा करता है। तो बोले, तुम ये काम नहीं करती, डरा के भगा दिया करो। बोले, क्या भगावे, दुग्ध दुग्धेश गवांगेश निपायत्येष्य वत्सान संभूय भूय क्रियते यदा वा रोष सदा लुम्पति तम स्मितेन। बोले, तुम कहती हो डरा दिया करो। अरे बजरानी क्या कहें, ये जब हमारे कुछ गुस्सा आता है, हम डराने जाती हैं, इतनी हंस देता है, तो इसकी हंसी इतनी मोहिनी है कि हमारा तुम्हारा तमाम क्रोध शांत हो जाता है, हम कुछ वहां बोल सकती ही नहीं। तब बताओ इसको, मैया को गुस्सा नहीं आ रहा, मैया को देख रही है कि सयाना हो रहा है। बुद्धू ही रहा, बुद्धू इसमें बुद्धि आ गई। तो हंस करके बोली, मैया ये अरे बता तो सही, ये फिर करता क्यों है, क्यों करता है ऐसा, कुछ तो कारण होगा। तो दूसरी वो भी बोली, नंदरानी क्या बतावें, ब्रज में तुम्हारा राज और तुम मालकिन, अरे ये तुम्हारा बेटा, तो अब बताओ ये हम इसको कैसे देखती। अरे मालिक का लड़का है, राजकुमार है, तो दोस्त का कैसे बताना, तुम नाराज मत होना, तुम मालकिन ठहरी। देखो ये बड़ा चटोरा हो गया, हमारे घर में बड़ा सुंदर सुंदर सुस्वादु बड़ा स्वादिष्ट ये दूध मक्खन और नवनीत होता है, ये सब तो ये खाने के लिए करता है, कटोरा है ना, तो जब हम सब जाती हैं बछड़ों को बांधने के लिए, तो भी घर देखता है सोना, तो भी हमारे घर में प्रवेश करके सब चीजें खा लेता है और सबको खिला देता है और ये बड़ी बड़ी युक्तियां जानता है। चोरी की कला में बड़ा निपुण है। तेयम स्वागत गधि फलक कल्पित से योग ही है। इसके योग में ये पारंग समाधिस्थ है, ये बड़ा इसमें निपुण हो गया। चोरी की कला ये जितनी जानता है उतना कोई जानता ही नहीं। तेरू पाया गुरु राम खिले, ये सारे चोरों का गुरु है ये। तो बजरानी हंस करके बोली, चरित पगली, मालूम होता है जब खाने को जाता है तो खाने को दे दिया कर, तू देती नहीं है, तू कंजूस, तू देती नहीं। ये छेड़ा छोटा बच्चा, तू शिशु स्वभाव, बस ये तेरे घर में छिपके खा लेता होगा, इसमें कौन सी बात हुई। तो गोपियां बोली, नंदरानी तुम तो मालूम नहीं इसके, तो ये तुम्हारा क्या क्या करता है। ये जब द्वार पर जाता है तुम कितना आग्रह करती हैं कि बेटा खा ले, मक्खन लेकर के आती हैं, न मालूम क्या क्या करती हैं। तब डांटता बोले, दिखाने आई है मक्खन, हमारे माँ के घर में मक्खन नहीं है, तेरे घर में मक्खन रखा है, क्यों खाऊंगा मैं तेरे घर, नहीं खाता जा। तो बोले, मैया इसको तो दी हुई चीज तो भाती नहीं, चोरी हुई चीज इसको भाती है। तो बजरानी हंस पड़ी, हंस के और लल्ला का मुंह चूमने लगी। अब भगवान ने बंकिम चितवन से टेढ़ी नजर से उनकी ओर देखा, फिर माँ की ओर देखा, मनु दोनों के हृदय को देख रहे हैं कैसा क्या भाव हो रहा है। तो देखा कि गोपियां तो खाली ये मुझको देखने के लिए आई हैं, उलाना उलाना तो खैर नहीं, और मैया के मन में गुस्सा आया नहीं, ये मैया भी हंस रही हैं, नहीं हंसी तो मुंह क्यों चूमती, तो ये मैया भी राजी है। तो इतने नंदरानी बोली गोपियों से कि अरे देखो, ये जैसा मेरा बेटा वैसा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ही तो है, इसने तुम्हारे घर में अगर मक्खन खाई लिया तो कौन सी बात है, तुम्हारे तो घरों में मक्खन के भंडार भरे रखे हैं। ये कहना था कि गोप सुंदरियों को तो आज खेल देखना। तो वो हाथ नचा नचा कर बड़े जोर से बोली, अरे बोले मैया, ये खाता है, खाता तब तक तो बात खैर, खा ले कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, पर तू तो देख पाती नहीं कितना उपद्रव मचाता है, ये हजारों हजारों बंदरों को बुला लेता है और अकेले घर में घुस करके मटकों के मटके मक्खन के और दही के दूध के निकाल निकाल के बांदरों में फैला देता है। अब बंदर जो हैं वो बड़े छोटे बूढ़े सब बंदर तो एक से बंदर होते हैं ना, बंदरों में छोटा बड़ा क्या है, तो बूढ़े बंदर भी तमाम आ जाते हैं वहां पर खाने के लिए। और जब बंदर खाते खाते भाप जाते हैं, बंदरों का पेट भर जाता है, तो ये क्या कहता है, तुम तो सुनने तुमको तो मालूम नहीं भैया, ये अपने सखाओं से कहता कि देखो भैया, ये गोपी बड़ी फूवर है, इसके घर का मक्खन और दही जरा भी स्वाद नहीं, कभी तो ये बंदर भी नहीं खाते, देख ये मक्खन बिलोना भी नहीं जानती, नहीं इसे दही जमाना आता है, ये तो खाली ऐसे ही मूर्खा है। जो कह करके और वो कहता है कि बोले चलो इसके यहां नहीं आना है, ये मक्खन बनाना नहीं जानती। और यूं कहकर जरा हमने इधर देखा कि घर में भूसा के तमाम मटकियों को फोड़ दिया। अरे मेरे दलिया सास की रखी हुई मटकी हो, पुरानी मटकी जो घी लग लग करके बिल्कुल घी मई हो गई, तो मरकान भोक्षण विभजत सत्य नाच भांडम भिन्नते हीलाल संतप क्रीदे भुगते शाखा मृगान भुज यथे प्रकामम न भुंजते थे यदि तृप्त मन तो भूमो कृत्य विविध भांडम। ये मैया इसकी करतूत है। बजरानी को तो पता नहीं बंदरों को क्यों खिलाता है ये, पर ये तो जानते हैं कि रामावतार में बिना ही किसी प्रकार के रसद दिए और बंदरों से काम लिया था, बेचारे अपने आप ही तो वृक्षों पर जाएं, अपने आप राक्षसों की मार सहें अपने आप फल बटोर के खाने, कौन सा रसद विभाग साथ चलता था राम के तो इनको इन्होंने कहा था कि अच्छा, बंदों ने एक दिन कहा, बोले महाराज हम बटोर उटोर के खा लेते हैं, कहीं आपके हाथ से बड़ी अच्छी बात है, कृष्णावतार में हम अपने हाथ से खिलाएंगे। वे सब बंदर जो थे ये आ गए यहाँ पर, तो उनको तो इनकी बात याद थी, तो कोई पारिश्रमिक नहीं दिया इनको, कुछ नहीं दिया, तो इसलिए ये इनको दे रहे थे। तो अब ये बंदरों की जब बात आई तो भगवान हंस पड़े, नंदरानी भी हंस पड़ी, तो गोपियों को भी हंसी आ गई। अब इनके मन में तो नकली गुस्सा था ना, तो ये सब नंदरानी बोली, अरे तुम एक काम करो, तुम मक्खन को छिपा के रख दिया करो, बच्चा जब पालेगा नहीं तो कैसे खाएगा, तुम घर में छिपा कर रख दिया करो तो फिर ये कैसे ले सकेगा। बोल नंदरानी तू तो भोली है और ये है बड़ा चतुर है ये। सुनाओ एक दिन की बात, एक बोली, मैया तू भोली है नहीं जानती इसकी कुछ कर तू, ऐसा झूठ शिरोमणि है तेरा सुगढ़ सांवरा तू, सुगढ़ सांवरा लगता बड़ा सुंदर है। मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी कर तू, ऐसा झूठ शिरोमणि है ये तेरा सुगढ़ सांवरा तू। ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने शकुन बठेरी मैं तत्काल। मेरी ननद एक दिन जा रही थी ससुराल, तो मैं तो उसके लिए शकुन मिठाई बना रही थी बैठी बैठी, मेरे घर में वो कोई नहीं था क्या, तो लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी देवरानी थी व्यस्त छत पर थी वह, इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। वो छत पर बैठी लगा रही थी मेहंदी, देवरानी दो ही थम घर में जुगाई और ननद तीसरी, वो उसके तो मेहंदी लगी रही थी छत पर थी। अब ये बाहर मौका ढूंढ रहा था कि मौका मिले तो जान, तो देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश, पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी पिछलेश, करों की आहट का लेश भी नहीं सुनाई दिया किसी को, ऐसा चुपके से आया पक्का है ना, घुर अंदर आ गया, एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला दधि भंडार, घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरंत ही बंद किवार। घुस गए तमाम अंदर माखन के घर में घुस करके चुपके से और किवाड़ बंद कर लिया। मैं देख तो रही थी बीच बीच में पर बना रही थी, तो नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको दधि घर के बंद, मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। मैंने देखा कि किवाड़ बंद दिखाई दिए, मैंने सोचा कोई आया गया नहीं है, सौगनी तो थी मैं, पर सोचा आया गया नहीं तो मैं अपना काम में लगी रही निश्चिंत, और ये अपना निश्चिंत काम करते रहे स्वच्छंद मन में मजे में काम करने। तो क्या काम करते, बोले काम तो तुम जानती हो, खाली थे कर दिए तुरंत मधु दधि माखन के सारे मात, पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा अनोखा ठाट, पता नहीं कितने थे सारे मात खाली कर दिए, खा पी कर कुछ मटके फोड़े होने दी न जरा आवाज, धीरे से पट खोल सभी ये भागे निकल मनोहर साथ। मुंह पर लगाए हुए किसी के मुंह पर लगा, किसी के हाथ पर लगा, ये सुसज्जित हुए दधि माखन से और धीरे से निकल के घर से बाहर निकली। सुने में तो मेरी आंख गई, तो देखा भाग रहे मैं दौड़ी झट जा पहुंची घर के द्वार, तब तक दूर निकल ये लगा चढ़ाने मुझको दे फटकार, फटकार चढ़ाने लगा, दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा, हंसा विचित्र हंसी यह चोर उरा रोष सब रही देख ली मैं अपलट हंस मुख की ओर।
गुस्से में गई और ये जब मुझे चिढ़ाने लगा तो और गुस्सा आया, इतने में हंस दिया। तो इसकी हंसी देख करके बस मेरा मन तो इसके हंसमुख की ओर लग गया और मेरा सारा रोष उड़ गया। गई भूल मैं इसे पकड़ना, इसके जादू के बश हो, तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो ये हो हल्ला करते हुए सब भाग गए मैया। अरे बोले ये तो, पर तू घर में अगर खूब छिपा कर रख देती और तारे बंद कर दे तब कैसे होता। बोले मैया तू जानते नहीं है, एक दिन की बात है, तो हमने अंदर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया, तो ये अंदर गया इसको कुछ मिला नहीं। ये किया हमने तुम्हारी वजह, हमारे पहले ध्यान में आ गया, हमने दरवाजे के ताले ढक दिए। जब नहीं मिला तो इसको बड़ा गुस्सा आया, तो द्रव्या लावेश गृह कुपितो याचित क्रोश तोखान दूरे स्थितो गर्जित तिष्ठ भू दग्ध्वा गृहम ताड़ितास्मि बालकान। बोली तेने दरवाजा बंद कर दिया, आज देख ठहर, अभी मैं जलता हुआ अंगारा लेके आता हूं और यदि मुझे दही दूध मक्खन नहीं मिला तो घर पर अंगारा रख दूं, सारा घर जलकर खाक हो जाएगा।
क्यों? भगवान बोले कि देख,
जिस घर में मेरे लिए कुछ ना हो वो घर आग लगने लायक, जिस घर में भगवान के लिए कुछ न हो उस घर में आग लग जाए। और बोले फिर देख, अगर नहीं मेरा केवल आग नहीं लगाऊंगा, घर के बालकों को ऐसी मार मारूंगा कि हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार कहकर बोले ये, और बच्चे सो रहे थे उसके चिकोटी क्योंकि काट काट कर भाग, हर बच्चे चिल्ला उठे तो मैया इसके सामने चलती नहीं। बोले तुम डांट दिया करो। अरे बोले मैया ये भी करके देख लिया। एक दिन किसी ने बोले, हम तो डरती थी कि हमारे घर में बहुत लोग, तो किसी छोरी ने कह दिया कि चोर है चोर। तो ये कहते ही इसकी आंखें लाल और रोष में भर गया, तो बोला मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, तुम सब। बोले कैसे चोर? अरे बोले घर तो सब मेरा है, तुम जैसी ममता करके बैठी हो ना, ये घरों में हम ममता करने वाले सब चोर हैं। घर भगवान का, घर की चीज भगवान की, हम कहते हमारी, हम कहते मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये हम भगवान की चोरी करते हैं। भगवान की चीज भगवान की माने, भगवान के अर्पण करें। तो नीलमणि बोले कि मैं चोर नहीं, ये घर में चोर एश इतके दुख क्रुद्ध एवं निगदत दृष्ट तुम चोर इदमेव तदी मदीयम ये मच सकल हिम। बोले सब कुछ मेरा है, बोले सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा, घर की प्रत्येक वस्तु मेरी, घर का मालिक मैं, तुम मालिक बन बैठी, तुम चोर हो। यूं बोले इसने खींच करके हम लोगों से कहा। यशोदा रानी तो जब ये कदम सुनी तो कितना होशियार है, ऐसी ऐसी बात कहने लगा ये, तो मैया मुस्कुरा उठी। तो फिर बोली वो ये यशोदा मैया फिर बोली कि अच्छा भाई, क्या देखा श्याम सुंदर क्यों डर तो नहीं गया? मैया को डर बहुत है, कहीं ये डर गया तो कहीं इसको कुछ हो गया। अरे डर के मारे बच्चा है, कहीं सहम गया, कहीं पसीना उसे नहीं बच्चे के आ जाए तो मैया को बड़ा दुख हो। तो फिर गोप सुंदरियों को देख करके बोली, अच्छा बोले बहनों तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या क्या किया, कितना नुकसान किया, ये साथ किताब तो बताओगी।
गोप सुंदरियां सब अपना अपना हिसाब बताने लगी। तो बोली कि भाई तुम एक काम करो, हिसाब तुम्हारा सुन लिया, जो कुछ हुआ उसका तो तुम अनुसार जाना ले लो, और आगे के लिए तुम हमारी बात सुनो, ये तुम ऊंचे छींके पर रख दिया करो, बहुत ऊंचा छींका इतना रखो कि जहां इसका हाथ पहुंचे ही नहीं, तब ये कैसे चोरी करेगा बताओ, नन्हा सा बच्चा है ना। तो बोले मैया ये भी हमने सबने करके देख लिया, ऊंचे छींके पर जब हम जब रखती हैं हाथ नहीं पहुंचता तब ये क्या करता है, हस्ता आग्रह रचते विधि पीठ को रूख ला दिए ही करा लभ्ये पीठम विरचयत पीठो परिपुनस् तदूर्ध्वं तच्चाल तदुपरि समारोप चरणौ समुद्बाहु सिक्या दधिचन वलीतादि चहरन् निषिद्धश्चेत् कैश्चित् क्षिपति सकलं तूर्णमवनौ। बोली मैया हमने करके देखा, जब ऊंचे छीके पर हाथ नहीं पहुंचा इसका तो उसने क्या किया कि पीढ़ा रखा, पीढ़े उखल और फिर उस पर एक पीढ़ा, और उस पर भी जब हाथ नहीं पहुंचा तो फिर दूसरा पीढ़ा रखा, फिर तीसरा पीढ़ा रखा, उस पर भी हाथ नहीं पहुंचा तो एक सखा से कहा कि चढ़ो इसके ऊपर, चढ़ाया फिर उसके पीठ पर हाथ चढ़ गया। अब बोले लगा करने वो नवनीत हरण चोरी करने लगा, और बोले किया क्या, गुस्सा आ गया तो छींके से यूं उलट उलट के तमाम मटकों को नीचे फेंकने लगा, और बोले मैया ये मेरे घर की बात नहीं कहता, कहती मैं, ये घर घर में सब घरों में ऐसे ही करता है रोज ही। तो बोले और ऊंचा कर दिया, तो बोली और ऊंचा किया, और ऊंचा किया, दूसरी बोली तो इसने क्या किया कि पत्थर फेंक के फोड़ा, निशाना बना लिया, और वहां से लंबी छड़ी उठा ली और उठाकर उसके नीचे से यूं उठा करके चढ़ गया एक के कंधे पर और छड़ी की नोक से उसमें छेद कर लिया। और बोले मैया ये बड़ा निपुण है, जितना बड़ा मटका उतनी छेद करता है, ऐसा नहीं कि बड़ा छेद कर दे, पर ऐसा भी नहीं कि आसपास छेद कर दे, जहां से ठीक ठीक वो मक्खन और दही आ सकता हो, और जितना इनके उसके मुंह में पड़े उतना ही चौड़ा उतना ही लंबा। तो वैसे ये चीज सिद्ध करता है, ये इस कला में निपुण हो गया है, और फिर कहता है कि सब अपना अपना मुंह बांधो, तो छेदों के नीचे सब अपना मुंह बा देते हैं, तो धारा ठीक मुंह में गिरती है, छिद्रम यंत्र विनीत भाई उन्हें शिक्य भांडे जूता दिवस, तदवी बड़ा बड़ा निपुण सब कला जानता है। बोले मैं भैया सुनाऊं एक दिन की बात, जिसने क्या किया इसकी चतुराई सुनाऊं मैं तुमको, मैंने छींके पर भार रखा, और तो ये सोचा कि मुझे पता कैसे लगे तो चुपके से आता है, तो मैंने छींके के साथ एक घंटी बांध दी कि छींका हिलेगा तो घंटी बजेगी, छेद करेगा तो घंटी बजेगी, तो मैं जा पहुंचूंगी पकड़ लूंगी। तो ये व्यवस्था करके मैं तो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जाके देखा तो मेरी हंसी रुकी नहीं, क्या देखा मैंने कि पीढ़े पर एक पीढ़ा रखा है और उस पर एक गोप बालक खड़ा है, उसके कंधे पर तुम्हारा ये नीलमणि खड़ा हो गया, और हाथ से इसने घंटा पकड़, एक हाथ से घंटा पकड़े इसमें घंटा बजे नहीं, और दूसरे हाथ में छिड़ के छेद किया, घंटा को पकड़ के छेद किया, ऐसे तो दूध की धारा बह चली, तब ये मुंह अपना कर दिया उसके सामने। तो बोले ये आनंद विभोर होकर के सिर हिलाते हिलाते दूध पान करने लगा, तो मैं तो आनंद में जड़ हो गई, दृश्य देखती रही इसको पकड़ने।